मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 22 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथी मित्रों विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है अश्वनी गोडबोले, आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। तो अश्वनी आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक स्टूडेंट को बधाई देने का अवसर हम सबके सामने आया है और ये स्टूडेंट हैं सोनू कुर्मी। सोनू कुर्मी हमारे एकेडमी के फोर्थ बैच के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है फाइनली उसमें उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे आप कहते हैं DYSP के पद के लिए सफलता हासिल की है। हालांकि ये सफलता उन्हें पिछले साल ही मिल चुकी थी, उन्होंने अभी हम लोगों को सूचित किया है। तो सोनू आपको पूरे के पूरे एकेडमी की टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और मैं अपनी ओर से इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में बेहतर सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। दोस्तों मुख्य विषय के तहत आज मैं थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में आपसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन थोड़ी दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। हालांकि दूसरी घटनाएं ऐसी कुछ है ही नहीं, आप जानते हैं कि होली के दिन तो सारा देश रंगीन होता है, दफ्तर में छुट्टियां होती हैं, ऐसी स्थिति में हमें किसी घटना की ऐसी उम्मीद भी नहीं करना चाहिए जो सिविल सर्विस में हमारे लिए उपयोगी हो सके। फिर भी एक दो बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। रेडियो न्यूज में आपने सुना कि जो अमेरिका है वो चीन पर लगातार इस तरह का दबाव बनाए हुए है कि चीन भी पाकिस्तान के ऊपर इस बात का दबाव डाले कि वह अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां न होने दें। इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में पर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद भारत ने बहुत जबरदस्त रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध कदम उठाया, जिसमें आप एयर स्ट्राइक को भी शामिल कर सकते हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत के नेतृत्व में आप कह लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ एक विश्व जनमत तैयार हुआ और जबरदस्त रूप से विश्व जनमत तैयार हुआ। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की भी थी। फिर फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका इसको सुरक्षा परिषद में लेकर के गए कि ये जो मसूद अजहर है इसे विश्व आतंकी घोषित किया जाए, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं होने दिया और चीन लगातार ऐसा होने नहीं दे रहा है। देखिए जब हम अपने एंगल से सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि चीन का हम विरोध करेंगे और दुनिया विरोध कर ही रही है और विरोध किया भी जाना चाहिए, लेकिन चीन के साथ दिक्कत ये हो गई है कि चीन के बहुत से आर्थिक हित पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। अब वो सीधे सीधे सब कुछ जान रहा है, इसके बावजूद वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो अब क्या किया जाए? ऐसे में एक बहुत अच्छा काम जो यूरोपीय देश कर रहे हैं वो ये कि ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं पारित किया जा सका, महासभा में उस इस प्रस्ताव को लाने की बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में इस बात को रखा जाए तो दुनिया इसे देखे और समझने की कोशिश करे। और इसके अतिरिक्त भी जो दूसरे देश हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अपने अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं। चलिए अगर सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित हो जाता फिर तो सामूहिक रूप से ही लोग कदम उठाते, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अपने लेवल पर तो कदम उठा ही सकते हैं। तो बहुत संभव है कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भी जो दूसरे देश हैं अपने अपने लेवल पर कुछ कदम उठाएं। उसी के तहत ही अभी अमेरिका ने चीन से कहा है कि वह विश्व आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करें। यानी कि ऐसा नहीं है कि चीन से निराश होकर के और उसे बिल्कुल किनारे ही कर दिया गया हो और यह अपेक्षा की जा रही हो कि हम बिना चीन के ही इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात भी है। क्योंकि चीन देखिए हमारा पड़ोसी देश है, एक बड़ा राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का वो एक तरह से प्रतिस्पर्धी देश भी है, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट राष्ट्र है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मेंस की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट देश है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के साथ अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो लगातार आपको पूरी पैनी निगाह उन घटनाओं पर रखनी चाहिए। मित्रों, आज के करंट कंटेंट में आपको वनाधिकार अधिनियम का मानवीय पहलू ये आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा। वनाधिकार अधिनियम का मानवीय पहलू ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। और कोई ताज्जुब नहीं कि अभी जो सितंबर में एग्जाम होने जा रहे हैं मेंस में, उसमें ये पूछ भी लिया जाए। इसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ उत्तर मांगे थे, और अब जिस रूप में वनाधिकार अधिनियम की बात की जा रही है उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। इसे आप ध्यान से पढ़िए और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं प्लीज आप उसे नोट भी कर लें। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय के तहत मैं एक जो लोकतंत्र का जो स्वरूप है, अलग अलग देशों में जो अलग अलग तरह के लोकतंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, हम सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए लोकतंत्र वह है जो भारत में लागू है। हम देखते हैं कि हर कोई 5 साल के बाद मतदान करता है, संसद के चुनाव हो जाते हैं, हम अपनी राज्य सरकारों का चयन करते हैं, यहां भी 5 साल के बाद हम मतदान करते हैं, चुनाव हो जाते हैं, फिर पंचायती व्यवस्थाएं हैं। लोकतंत्र के बारे में हम इतना जानते हैं और इसकी परिभाषा भी हमारी रटी हुई है, लेकिन इनफैक्ट यह उतना सरल है नहीं। अगर हम दुनिया को देखेंगे और दुनिया के ऐसे देशों को जहां ऑलरेडी डेमोक्रेसी है, तो वहां आपको उसके बड़े अलग अलग रूप दिखाई देंगे। स्ट्रेट वही रूप नहीं है जो भारत में लोकतंत्र का है, बल्कि यूं कह लीजिए कि जैसे ही भारत ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया और पहले चुनाव हुए, तो उस पहले चुनाव में ही भारत ने लोकतंत्र को सबसे व्यापक रूप में लागू किया, सबसे व्यापक रूप में। अदरवाइज दूसरे देशों में जहां लोकतंत्र आया, चाहे फिर वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश क्यों न रहे हों, उस रूप में लोकतंत्र नहीं लागू हो सका था जिस रूप में भारत ने अपने यहां लागू कर दिया। तो उसको थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से देखने और समझने की आइए कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी झलकियां आपको लोकतंत्र की दूंगा। देखिए, पाकिस्तान को लीजिए, चलिए है ना, वहां से हम शुरू करते हैं। पाकिस्तान भी अपने को कहता है कि वो लोकतांत्रिक राष्ट्र है, हालांकि पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बीच बीच में बकायदे सैन्य शासकों ने उस पर अधिकार किया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जब वहां का सैन्य अधिकारी प्रमुख बन जाता है, राष्ट्र प्रमुख बन जाता है, तो देखिए फिर वो करता क्या है, वो निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटता है, जो वास्तव में प्रधानमंत्री हैं, जो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं, उनका तख्ता पलटता है, खुद हेड बन जाता है, और खुद हेड बनने के बाद फिर वहां वो जनमत संग्रह कराता है। तो लोकतंत्र का मतलब है जनमत संग्रह, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि कौन सरकार बनाए, तो जनमत संग्रह कराता है और फिर वह खुद जो एक तरह से सैन्य प्रमुख था अब निर्वाचित शासक बन जाता है, राइट। तो यह भी एक लोकतांत्रिक स्वरूप धारण कर लेता है, लेकिन क्या आप इसे सही मायने में लोकतंत्र मानेंगे? दुनिया इसे एक धोखाधड़ी मानती है, लोकतंत्र एक छद्म लोकतंत्र आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि एक सैन्य शासन के तहत अगर जनमत संग्रह कराए भी जाएंगे तो सोच करके देखे कि वे जनमत संग्रह कितने अधिक स्वतंत्र होंगे, डेफिनेटली उन पर कुछ न कुछ दबाव तो होगा ही। दूसरी बात देखिए कि हम सब जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो यह होता है कि जो शासक का जो चुनाव है, जैसे हमारे यहां प्रधानमंत्री वो रियल शासक है, उनका चुनाव सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि सभी लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं। देखिए, अब चूंकि चुनाव का माहौल है इसलिए मैंने खासकर इस टॉपिक को चुना है। नंबर वन, एक वयस्क मताधिकार, यानी जो लोग भी वयस्क हो गए होंगे उन्हें मत देने का अधिकार होगा, हर वयस्क। भारत में पहले 21 साल था, बाद में 18 साल कर दिया गया है, अपने अपने देश में लोग अपनी अपनी उम्र निर्धारित करते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति एक वोट। तो इन दोनों को आप एक तरह से समानता का सिद्धांत मान सकते हैं। लोकतंत्र के तहत हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, समानता, और एक व्यक्ति को एक वोट ही देने का अधिकार है, समानता। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अगर धनी है तो उसको साहब 10 वोट देने का अधिकार है। आइए अब हम देखते हैं कि क्या इसके विरुद्ध भी कुछ दूसरी पद्धतियां प्रचलित हैं। कुछ पद्धतियां प्रचलित है, जैसे अगर आप सऊदी अरब में जाएं तो वहां महिलाएं वोट नहीं दे सकती, महिलाएं वोट नहीं दे सकती। याद रखिए कि बहुत समय पहले तक ब्रिटेन जैसे देश में भी महिलाएं वोट नहीं दे सकती थीं, और अमेरिका में भी अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में भी जब ब्रिटेन का शासन था तो देखिए मतदान तो शुरू हो गए थे, आपको मालूम है कि 1937 में तो बकायदे हमारा मंत्रिमंडल ही बना था, तो क्या उस समय हर एक को वोट देने का अधिकार था? नहीं, उस समय भी यानी कि ब्रिटिश भारत में भी सभी को मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन मताधिकार था और लोकतंत्र भी था। फिजी में जो फिजी वासी हैं, वहां जो मूल वासी हैं उनकी जो कीमत है, देखिए फिजी एक ऐसा देश है, एक तो वहां के लोग ही हैं जो रह रहे हैं, दूसरे वहां बहुत अधिक भारतीयों को भेजा गया था, भारतीय मूल के वहां बहुत अधिक लोग हैं, यानी अंग्रेजों ने मजदूर के रूप में वहां भेजा था। तो जो मूल वासी हैं उनकी वोटों की कीमत जो भारतीय भेजे गए हैं उनसे अधिक है। मतलब वहां दो तरह के नागरिक हैं और उनके वोटों की कीमत अलग अलग है। जो मूल फिजी वासी हैं उनकी वोट की कीमत अलग है, और जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी कीमत अलग है। चलिए अब हम अगले रूप पर आते हैं, उसे आप स्वतंत्रता कह लीजिए। कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि नहीं, मीडिया को पूरी तरह से आजादी होगी जैसे हमारे यहां है, व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी आजादी होगी कि व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कुछ भी अपने मत रख रहा है, कोई भी अपना राजनीतिक दल बना सकता है, सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर सकता है, न्यायपालिका अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होगा, विधि का शासन होगा, कानून के सामने सभी समान होंगे, इस तरह की बातें लोकतंत्र में आती हैं। इसमें एक जो उदाहरण है वो जिम्बाब्वे का ले सकते हैं आप, अफ्रीका का देश है जो 1980 में आजाद हुआ और बहुत लंबे समय तक रॉबर्ट मुगाबे ही इसके शासक रहे और बकायदे निर्वाचित शासक, निर्वाचित शासक। निर्वाचित शासक होने का मतलब है लोकतांत्रिक प्रणाली, और अजीब बात है कि वहां हमेशा एक ही दल की जीत होती रही, चुनाव में लगातार गड़बड़ियां होती थी, कोई सरकारी विरोधी आंदोलन हो ही नहीं सकता था, उसे गैर कानूनी करार दिया जाता था, और न्यायालय के आदेशों की भी सरकार बड़े आराम से अवहेलना कर सकती थी। अब देखिए कि वह भी एक लोकतंत्र है। चलिए अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं अब उनके बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप अक्सर सुरक्षा परिषद के बारे में पढ़ते हैं, अभी चीन के मामले में ही आप देखिए, मतलब जो मसूद अजहर को जो आतंकी घोषित करना था, वैश्विक आतंकी, उसमें चीन ने क्या रवैया किया। उसका जो सुरक्षा परिषद है, आप देखिए कि सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो का अधिकार है, वीटो का अधिकार, यानी कि इन 5 देशों में से अगर कोई भी एक देश तैयार न हो तो वो पारित ही नहीं होगा, वो प्रस्ताव ही पारित नहीं होगा, चाहे पूरी की पूरी महासभा, मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में 200 देश हैं और 200 देश किसी चीज को सर्वसम्मति से पारित कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन इन 5 देशों में जिन्हें वीटो का अधिकार है, अगर एक देश भी उससे सहमत नहीं है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। क्या हुआ, ये लोकतंत्र हुआ? मतलब 199 एक तरफ है लेकिन एक व्यक्ति एक तरफ है। जैसे सन 2003 में इराक पर जब अमेरिका ने आक्रमण किया था सद्दाम हुसैन के मामलों में, तो आप सोचिए कि महासचिव ने, जो यूएनओ के जो महासचिव है, उन्होंने बकायदे इस युद्ध को गैरकानूनी घोषित कर दिया, लेकिन क्या उनकी बात मानी गई? वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, आपने किनारे कर दिया और उस पर आक्रमण कर दिया। तो क्या ये जो यूएनओ का स्ट्रक्चर है ये लोकतांत्रिक है? फिर चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जितने भी सदस्य हैं उनके वोटों की संख्या बराबर नहीं है, समझिए, यानी कि एक देश एक वोट, नॉट एट ऑल। वहां जिस राष्ट्र ने कोष में यानी कि उसके फंड में जितना पैसा दे रखा है, जितना धन दे रखा है, उसके अनुपात में उनके वोटों की संख्या है। और ऐसे में अमेरिका का सबसे ज्यादा दबदबा है क्योंकि अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सबसे अधिक पैसा दे रखा है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि 7 देश ऐसे हैं जिनके पास आधे से अधिक वोटों का अधिकार है, केवल 7 देश, और बाकी पूरे के पूरे देश अलग है। ये 7 देश हैं, बटने चले कि वो देश होंगे जो बहुत धनी हैं: अमेरिका, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और सऊदी अरब। इन 7 देशों के पास आधे वोट हैं, सोच के देखिए, और बाकी दुनिया के जो देश हैं उनके पास आधे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो दोस्तों, कुछ मैंने आपके सामने लोकतंत्र के अलग अलग रंग प्रस्तुत किए हैं, और इस तरह के रेफरेंसेज मुझे लगता है कि एनालिसिस पावर डेवलप करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। उसी बात को ध्यान में रख करके मैंने आज मुख्य विषय के रूप में इसे चुना है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स फ्रेंड्स, आज तो आपको पढ़ने को नहीं मिले होंगे, कल की छुट्टी के कारण न्यूज़पेपर्स नहीं आए हैं, लेकिन मेरे पास जो कल के कुछ न्यूज़पेपर्स आए थे उसमें से जो आपके पढ़ने लायक इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हो सकती हैं वो मैं आज आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 3 दोस्तों के नाम हैं: सतीश कुमार संत प्रयागराज से, हेमंत नागर और अनीता यादव। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, कल शनिवार है और परसों रविवार है, इन 2 दिनों में आपको डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं हो सकेगा। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।